Rati kelas Radha. तेरह नौ 1966 तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी भारत जब शिष्टाचारी हो जाता है तो सारी विश्व ही शिष्टाचारी शिष्टाचारी विश्व में मनुष्य नहीं शिष्टाचारी देवताएं भारत है ही शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बना बाकी मनुष्य को ऐसे नहीं कहेंगे शिष्टाचारी दुनिया में होंगे ना वो शिष्टाचारी जो आत्मा बनते हैं ना वो फिर आत्मा के इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में या आत्माओं के लोक में शांति धाम में होंगे और शिष्टाचारी सब बनते हैं सब माने कितने कितने शिष्टाचारी बनते हैं बाबा ने तो कहा सब बनते हैं पहले जन्म में तो हर आत्मा जीवन मुक्ति को पाती है ना तो शिष्टाचारी कहे या भ्रष्टाचारी कहे समझा ना बच्ची बाप आते हैं तो सबको ही सदगति देना है सबको ही सुदुख से भ्रष्टाचार से लिबरेट करना है अर्थात रावण से लिबरेट करना है रावण के इन पांच विकारों से लिबरेट करना तो पीछे तो सभी शिष्टाचारी हुए ना सब आत्माएं प्योर हो गई ये किसको हम भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी कहे आत्माओं को बनाते हैं ना वो ऐसे नहीं समझते हैं कि आत्मा बनती है आत्मा में नहीं जाते हैं जब तुम उनको समझाते हैं तब समझते हैं उनकी बुद्धि शरीर पर जाती है भ्रष्टाचारी दुनिया को हेल भी कहते हैं समझा ना अखबार में मैं समझता हूँ कोई एमपी ने ये आर्टिकल जानी थी कि बायोस्कोप में जाना गोया हेल में जाना वो तो है ही प्यार और विकार की बातें तो विकार की बातें तो हेल में ही होती है ना बच्चे बल्कि बहुत ही छी-छी बातें तो बाबा बायोस्कोप में जाने के लिए मना करते हैं कोई हालात में बाबा छुट्टी देते हैं कि कोई मित्र संबंधी आते हैं बिलाइत से तो वो حجت اٹھاتے ہیں تو بابا پھر بولتے ہیں اچھا بچے ساکھی ہو کر کے ان کو رنجن ہووے. میوزک بجا اچھا میٹھے میٹھے سے کل دے روحانی بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار گڈ نائٹ. پھر بولے میجارٹی بھی بہت ہے اکٹھی, ان میں پھر کماریاں بھی ہیں, اس لیے بچوں کو راضی کرنے کے لیے کہ اچھا جو کچھ ہنر سیکھا ہے کوئی بھی تو بھلے بتاؤ. باپ کہتے ہیں یہ ڈانس بھی تو کرم ہے نا, یہ کرم کرتے رہو اور باپ کی یاد کرتے رہو. یہ کون کہتے ہیں؟ خود معشوق سبھی عاشقوں کو کہتے ہیں, کیونکہ یہ ساری دنیا میں جو بھی آتمائیں ہیں اس سمے میں بھکتی مارگ میں ہیں وہ معشوق کے عاشق ہیں تو یاد کرتے رہتے ہیں. معشوق کو یاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ کس لیے کیا جاتا ہے؟ سکھ کے لیے. ایسے ہے نا بچی؟ تو یہ تو ہے ہی سلونا, بہت سکھ دینے والا معشوق. تو یہ تمہارا یوگ ابھی معشوق خود آ کر کے عاشقوں سے, کیونکہ تم آدھا کلپ کے عاشق رہے ہو, ستیوگ اور تریتا میں تم عاشق نہیں رہتے ہو, کبھی بھی تم معشوق کو یاد نہیں کرتے ہو, کیونکہ اس سمے معشوق آ کر کے تم سبھی عاشقوں کو ساری دنیا کو سب کو لبریٹ کرتے ہیں. کائے سے لبریٹ کرتے ہیں؟ دکھ سے. پھر سکھ اور شانتی میں لے جاتے ہیں. ستیوگ ہے تو سکھ بھی ہے شانتی بھی ہے. اور بھارت واسی ہو, باقی جو اتنے انیک دھرم والے ہیں وہ سبھی شانتی میں. کوئی بھی پھر جب آئیں گے یہاں تو پہلے سکھ میں آئیں گے, تو گویا سب کا دکھ ہرتا سکھ کرتا, کیونکہ جو کوئی بھی پہلے پہلے وہاں سے آتے ہیں وہ سکھ میں ہی آتے ہیں, ستو پردھان بن کر کے آتے ہیں. پیچھے جو بھی آتے ہیں ان کو پہلے ہے سکھ. ستو پردھان, ستو رجو تمو, پیچھے آنے والوں کو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے, تھوڑا ٹائم ستو, تھوڑا ٹائم ستو سامان, پھر تھوڑا ٹائم رجو, اور پھر تھوڑا ٹائم تمو. تم کو تو بہت ٹائم ملتا ہے, اور کوئی بھی دھرم والے کو نہیں کہا جاتا ہے. اسلامی بودھی کرسچن والوں کو یہ ٹائٹلز نہیں دیے جاتے. تو یہ گایا ہی جاتا ہے بھارت کے لیے کوڑی جیسے, کیونکہ بھارت بنتا ہی ہے کوڑی جیسا. یہ بھارت ہی ہے جو پھر ہیرے جیسا بنتے ہیں. اور کوئی بھی دھرم ایسے نہیں ہے جو کوڑی سے ہیرے جیسے بنتے ہوں. ادھوری مرلی چھوٹ گئے. اگلا پراتہ کلاس ہے 14/9/1966 بدھوار کو ریکارڈ چلا, مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں. بچوں نے یہ گیت سنا. جب کوئی مرتے ہیں تو باپ کے پاس آتے ہیں, ठीक है ना बच्चे, कोई भी मरेगा तो कोई न कोई बाप के पास जाएगा, बाप के घर में जाएगा, कहेंगे बाप को बच्चा पैदा हुआ। ऐसे नहीं कहते हैं कोई को कि माँ को बच्चा पैदा हुआ, नहीं, बाप को बच्चा पैदा हुआ। और कांग्रेचुलेशंस भी बाप को भेजी जाती है, बधाइयां भी बाप को दी जाती हैं। ठीक है ना बच्चे, अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सभी आत्माएं वो तो शरीर के लिए समझते हैं, यहाँ तुम आत्मा एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरे बाप के पास जाते हो, ऐसे समझते हो। तो बाप ने समझाया है तुमने 84 बाप किए हैं, और बाप कौन से किए हुए हैं? साकारी बाप किए हुए हैं। हो वास्तव में तुम असल में निराकारी बाप के बच्चे, असल और नस्ल तुम्हारी आत्मा है और परमात्मा के बच्चे हो, और रहने वाले भी यहाँ के हो, कहाँ के, जहाँ बाप को याद करते हो, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, ये शांति धाम कहो वह आत्माओं की दुनिया कहो, तो असल तुम रहने वाले वहां के हो। ये जानते हो, और फिर रहने वाले वहां के हो, तुम्हारा बाप भी वहां रहते हैं, यहाँ आते हो, यहाँ आकर के तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, उनको भूल जाते हो, फिर तुम सुख में जाते हो तब तो भूल ही जाते हो, बाप को याद भी नहीं करते हो, क्योंकि ये तुम जानते हो कि सुख में कोई स्मरण नहीं करते हैं उस बाप को। देखो सारा बाप के ऊपर है, फिर दुख में उस बाप को याद करते हो, और याद भी आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा जब याद करती है तो ऊपर में बुद्धि जाती है, उस बाप को याद करती है। जब इस बाप को याद करते हैं तो अभी यहाँ उसकी नीचे बुद्धि रहती है, कहेगा बाबा बाबा ऐसे करती है, और जब फिर उनको याद करती है वो बाबा, तो लोगों बुद्धि कहाँ जाती है, ये फर्क रहता है ना। तो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में ये फर्क है बाप की याद में। क्या बताया है? भक्ति मार्ग में बाप को याद करते हैं तो नीचे बुद्धि रहती है, और ज्ञान मार्ग में बाप को याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर जाती है। हैं दोनों बाबा, वहां भी कहते हैं बाबा, उनको भी कहा जाता है बाबा। कौन कौन से बाबा हैं बताए? एक साकारी दुनिया में पुरानी दुनिया का बाबा, और दूसरा है तो अक्षर राइट फादर ही है। ठीक है ना बच्चे, वो भी फादर और वो भी फादर। इसको यहां देखते हैं, किसको हैं? इसको यहां देखते हैं किसको? ब्रह्मा कोई फादर थोड़ी है। हाँ, जो बाप है उसकी बात बताई, अलौकिक बाप। जब उस फादर को बुलाती है आत्मा तो वहां नजर करती है। अब ये बातें आत्मा को मालूम नहीं। अभी बाबा बैठ कर समझाते हैं बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हम फिर उस बाबा के बने हैं, हैं? हम उस बाबा के थे, वो बाबा आए हुए हैं और हमको अपना बनाया है। परंतु बाप कहते हैं हम जो तुमको भेजा था वहां से, तब तो तुम पवित्र थे और स्वर्ग में आकर के राजभाग किया था। अभी तुमने 84 जन्म लिया, ये बात समझाते हैं और तो कोई नहीं समझा सकता। एक बाप ही समझा सके। अभी तुमने 84 जन्म लिया, ठीक है ना? ड्रामा का प्लान तो तुम बच्चों को समझाया। अभी याद करते आए हो, अभी दुखी भी हुए हो और ड्रामा के प्लान अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म भी होनी है, वापस भी तुमको आना है। क्योंकि तुम ये वस्त्र जिसको चोला कहा जाता है, ये वस्त्र पहनते पहनते जो तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान थी और तुम्हारा ये जो शरीर है वो भी सत्व प्रधान था, पीछे तुम जानते हो कि आत्मा सत्व प्रधान से सत्व में आई, यानी सिल्वर एज में आई, फिर तुम्हारा शरीर भी सिल्वर एज में आ गया। साथ में रहते हैं ना इकट्ठे, कौन? शरीर और आत्मा साथ में इकट्ठे रहते हैं ना। पीछे आत्मा सिल्वर एज में, सिल्वर एज से कॉपर एज में आई, तो तुम्हारा शरीर भी कॉपर एज में आ गया। इस शरीर को जेवर भी कहा जाता है, जैसा सोना वैसा जेवर। अभी तुमको क्या जेवर मिलते हैं? 14 कैरेट। क्या करते हैं? प्योर सोने में वो खाद मिलाई देते हैं तो 14 कैरेट हो गया, और जास्ती खाद डालो तो 9 कैरेट हो गया, ठीक है ना बच्चे? तो देखो, नाम भी बड़े अच्छे रखे हुए हैं और ये बाप बैठ करके समझाते हैं। अभी तुम आ गए एकदम मुलम्मे का सोना, यानी जो आत्मा पतित हो गई है तो सोना भी पतित हो गया, उसको ऐसे ही कहेंगे। 14/66 की वाणी का दूसरा पेज देखो। अखबार में लिखा था कि 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि वो काला पड़ जाता है, खाद पड़ी हुई है तो काला पड़ जाता है ना, इसीलिए तुमको कहा जाता है काले पड़ गए हो, आयरन एज में आ गए हो। अभी काला सोना जो खाद पड़ गई, ये फिर प्योर कैसे बने बच्चे? ये काले सोने को प्योर करने की युक्ति कहां से आवे? जो फिर हम आत्मा जो प्योर थी और हमारा शरीर भी प्योर था, अभी वो प्योर बन करके फिर प्योर शरीर हमको मिले, जिसको सुंदर भी कहा जाता है। तो वो सुंदर शरीर कैसे बने? क्या स्नान करने से है? स्नान करने से तो कोई मिलता ही नहीं, कभी भी नहीं मिलता सुंदर शरीर। तो देखो पुकारते हैं ये स्लोगन, हे पतित पावन, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। हे पतित आत्मा को पावन करने वाला, देखो बुद्धि वहां जाती है ना, ऐसी नहीं कि बुद्धि जाती है लौकिक बापे की तरफ, नहीं, बुद्धि जाती है वहां, हे बाबा। फिर बाबा अक्षर देखो कितना मीठा है, भले भाषाएं बहुत हो गई हैं, परंतु फादर बाबा अक्षर बड़ा अक्षर है, और भारत में ही बाबा बाबा आकर के बोलते हैं, और कोई जगह में ऐसी लैंग्वेज, कहते पिताश्री फलाना, दादे को दादा, दादे को फाफा, पता नहीं क्या क्या कहते, पर असल भारत में अक्षर है बाबा, तो बाबा ही कहते हैं। बच्चे भी देखो बड़े होते हैं ना, बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी आत्माभिमानी बन और बाबा के बने हैं, और बाबा से ही हम फिर से जो बाबा कहते हैं ना, मैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, पहले पहले भेजा था, और यहाँ आकर के नया शरीर तुमने लिया था, अच्छा अभी हम फिर आए हैं, फिर तुमको नया शरीर देने आए हैं। अभी तुम बच्चों को समझा दिया ना कि बच्चे, और तो कोई नहीं ये बातें समझा सके ना, ये बात बाप बिगड़ तो कोई समझा ही नहीं सकता। तो बाबा हमेशा बाबा बाबा अंदर में तुम्हारे पास पड़ा रहे। बाबा समझा दिया है कि आत्मा जब नीचे देखती है तो बाबा इनको कहते हैं, जब कुछ दुख होता है तो बाबा उनको कहते हैं। क्या कहा? इनको बाबा कब कहती है आत्मा? इनको माना राम और कृष्ण की आत्माओं को जब बाबा कहती है तो नीचे देखती है। तो देखो इनको कहती है, जब कुछ दुख होता है तो बाबा उनको पुकारती है। किनको? शिव बाबा को पुकारती है, कहते हे पिता, पिता कहो फादर कहो, बात तो एक ही है। तो बच्चे अभी तुम जानते हो कि हम उस बाबा को, जो बाबा पतित पावन है, बाबा आया हुआ है, तो उनको याद करते हैं। हे बाबा, हम आत्माएं जो पतित बन गई है, हम पतित को और कोई पावन नहीं बना सकता, हे बाबा पतित पावन आओ, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है। क्या? पतितों को पावन बनाने, ड्रामा के अंदर उनका पार्ट है, तभी तो बुलाते हैं ना। किस लिए बुलाते हैं? पति से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। क्या पार्ट बजाते हैं? अरे कुछ पार्ट बजाते हैं ना,
अरे अभी तो बोला तुम भक्ति मार्ग में बुलाते रहे, हे पतित पावन आओ, क्योंकि उन्हीं की ये ड्यूटी है ना। ड्यूटी है या नहीं है? ड्यूटी है, ड्रामा के अंदर उनका ये पार्ट है। क्या पार्ट? पतितों को पावन बनाने का। तो जो ड्यूटी बजाई जाती है या पार्ट बजाया जाता है वो बिना कर्मेंद्रियों के बजाया जाता है क्या? कर्मेंद्रियों से ही बजाया जाता, तभी तो बुलाते हैं ना वो पतित पावन आओ। तो देखो सब सब ऐसे कोई भी नहीं है जो नहीं बुलाते हैं। क्या इंग्लिश में भी बुलाते हैं? सब लैंग्वेज में कहेंगे लिबरेटर, हे फलाना आओ। तो ड्रामा के प्लानुसार बच्चों को समझाया गया है, जब पुरानी दुनिया नई होती है तो जरूर संगम पर आएंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो क्या जानते हो? पुरानी दुनिया नई कब होती है? हैं? संगम पर नई होती है। तो कब होती है नई? क्या कहें, 36 में, 1936 में होती है नई है? नहीं नहीं होती, 1947 में कहे हैं है? नहीं नहीं होती है, उस समय नई दुनिया का मॉडल नहीं बनाया है? अरे बताते तो हैं कि पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का वर्षा देता हूँ, नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो 1947 में मॉडल बना के वर्षा दिया नहीं है? अरे कराची में, पाकिस्तान में कराची बनाना, 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सारे भारत में खून की नदियां बह रही थी, पाकिस्तान में भी बह रही थी। तो नरक था ना, उस नरक के बीच में तुम बच्चे कराची में सागर के किनारे बड़े आराम से रहे पड़े थे, तुम्हें पता था हैं कि वहां खून की नदियां बह रही हैं, तुमको पता भी नहीं पड़ा। तो स्वर्ग में थे तुम जैसे कि नरक में थे? तुम जैसे कि स्वर्ग में थे, जैसे कि क्यों? वास्तव में कोई स्वर्ग नहीं था, लेकिन एक एक मॉडल जैसा दिखा दिया। तो पुरानी दुनिया होती है तो जरूर संगम पर आएंगे। तो क्या 1947 को संगम गए हैं? हैं? नहीं। क्यों हैं? क्योंकि मॉडल बनाया ना, सच्चम सच्चे स्वर्ग तो नहीं बनाया, नरक का भी छोटा सा नजारा था या बड़ा नरक था? सारी दुनिया में छोटा सा नजारा था। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी सब तो नहीं जान सकते ना बच्चे, क्योंकि कोई को भी पता नहीं है। सब क्यों नहीं जान सकते? अरे वास्तव में हम जानते हैं कि बच्चा जब आता है तो पहले तो बाप ने बीज डाला, फिर 4-5 महीने में वो बीज भ्रूण बन करके बड़ा बच्चा तैयार हुआ, निर्जीव पिंड तैयार हुआ।
तो सन 47 में क्या कहे, क्या बना? निर्जीव पिंड बना, जड़। कैसी बुद्धि वाला? जड़ तुम ही बुद्धि वाला। फिर 76 में क्या हुआ है? बाप की आत्मा ने प्रवेश किया। ऐसे होता है ना दुनिया में? कैसे होता है? पहले बाप बीज डालता है, फिर जो भ्रूण है वो गर्भपिंड बन के तैयार होता है, निर्जीव गर्भपिंड। फिर बाद में उसमें 4-5 महीने के बाद है आत्मा प्रवेश होती है। तो आत्मा ने कब प्रवेश किया? 76 में प्रवेश किया कि परमपिता ने प्रवेश किया? परमपिता ने प्रवेश किया, सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया या आत्मा ने प्रवेश किया? आत्मा ने प्रवेश किया। तो ये बात सब तो दुनिया में नहीं जान सकते, क्योंकि कोई को भी पता नहीं है। क्या है बाप के प्रत्यक्षता होने का? कोई को भी पता नहीं है कि कब आया। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मनाए लेते हैं शिव जयंती, तो क्या उनको पता है कब आया? फिर कैसे मनाते? कहते हैं 78वीं शिव जयंती, 40वां शिव जयंती, हर साल मनाते। तो क्या आया है? आया तो नहीं, फिर कैसे मनाते? अरे भक्ति मार्ग वालों को देखते हैं तो उनकी देखा तो उन्हें खुद भी मनाने लग पड़ते हैं। तो पता तो कोई को नहीं। शास्त्रों में अगड़म बगड़म बहुत लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को तो निश्चय है, और अच्छा ही निश्चय है। और जिनको निश्चय है, अरे वो तो बस बात मत पूछो। बिलवड मोस्ट, लवली मोस्ट, ये भी ऐसे ही कहते हैं, स्वीट चिल्ड्रन। वो गाया जाता है ना, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अभी बताओ स्वीट कौन है? हैं? समझा ना? सुनो पहले, स्वीट वास्तव में लौकिक संबंध में पहले नंबर में स्वीट फादर, क्योंकि जन्म देते हैं, पीछे उनसे ऊपर होते हैं टीचर। समझा ना? अभी भी बाबा कहते हैं ना, टीचर अच्छे होते हैं। देखो अभी दुनिया में जो गुरु हैं, वो डुबोते हैं, और टीचर है ये तो नहीं कहेंगे कि डुबोते हैं। बाप भी डुबोते हैं, टीचर तो नहीं डुबोते हैं ना। 14966 प्रातः क्लास का 3rd पेज। टीचर तो पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचिंग को कहा जाता है ये नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने कहां का मिसाल दिया? बाप और टीचर का जो मिसाल दिया, कहां का मिसाल दिया है? लौकिक दुनिया का मिसाल दिया। लेकिन कहां के लिए मिसाल देते हैं? कहां की बात समझाने के लिए मिसाल दिया जाता है? हैं? ये ब्राह्मणों की दुनिया के लिए समझाने के लिए मिसाल दिया कि जो लौकिक बाप होता है, जन्म देने वाला, वो ब्राह्मणों की दुनिया का लौकिक बाप कौन? ब्रह्मा बाबा तो अम्मा बाबा हो गई, प्रजापिता। तो प्रजापिता खुद भी डूबा कि नहीं डूबा है? जो खुद पार गया होगा तो बच्चों को भी पार ले जाए, खुद डूब गया, फेल हुआ या पास हुआ तो बच्चों को भी डूबोते। अच्छा, टीचर तो नहीं डूबोते, डूबोते यहाँ टीचर कौन है? शिव बाबा। कब से टीच करना शुरू किया है? 76 से। तो 76 से टीच करना शुरू किया तो टीचर जो है, बाप तो कहते हैं, यहाँ बाप, यहाँ टीचर है, यहाँ गुरु एक ही है, नहीं है, एक ही है। तो सन 36 में जिस बाप ने बीज डाला वो कौन था? प्रजापिता था। उसने ज्ञान का बीज डाला है? शिव बाप ने ज्ञान का बीज डाला। वो ही शिव बाप जो प्रजापिता के द्वारा ज्ञान का बीज डाला, वो फिर टीचर भी बनता है। तो टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचिंग को कहा जाता है नो, ये नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, ये भी नॉलेज है जो तुमको बाप देते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम है भारी। काहे का नॉलेज देते हैं, ज्ञान और योग का नॉलेज देते हैं। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, योग को कहा जाता है याद, क्योंकि तुम भूल गए हो उनको जिन्होंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। बरोबर, भारत स्वर्ग का मालिक था, मालिक बनाया जरूर। कब मालिक बना? भारत स्वर्ग का मालिक कब बना है? संगम युग में भी। कब? संगम तो बड़ा लंबा चौड़ा 100 साल का दिखाई दिया। जितने भी धर्म पिताएं आए और 100 साल के अंदर ही तो अपना काम किया। ये बाप भी आते हैं, 100 साल के अंदर अपना कार्य करते हैं। तो 100 साल का बड़े में बड़ा संगम युग है। लेकिन भारत मालिक कब बना विश्व का? 100 साल में बना कि 50 साल में बना? कि जब 36 में कहते हैं 1936 में विश्व का मालिक बना है? नहीं बना। तो बाबा कहते हैं जब शिव जयंती हुई तब विश्व का मालिक बना। जयंती जय अंति, जयंती जो है वो साकार की होती है या निराकार की होती है? सन 36 में तो बीज डाला, निराकार था या साकार? निराकार। तो जयंती थोड़े ही कहेंगे। तो देखो, जयंती तब हुई जब शिव बाबा यहाँ आया हुआ है। कब आया हुआ? कब कहें? अरे बच्चा भी जब इस दुनिया में आता है तभी जन्मदिन मनाते हैं ना? हैं? कि पेट में आत्मा प्रवेश करती है तब मनाते हैं? नहीं। तो जब शिव बाबा आया हुआ है तब ही शिव जयंती हुई,
और तभी तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। एक सेकंड में क्या देते हैं, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। क्या 76 में कहें कि बाप आया आत्माओं का है, कहें नहीं कहें? अगर आया होता तो कोई की एक सेकंड में जीवन मुक्ति हुई होती। विश्व का मालिक प्रसिद्ध हो जाता। अभी कैसे आया अभी तो किसी को पता ही नहीं है। है ये बात चित्रों में है, देखो त्रिमूर्ति को देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा ऊपर में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अभी लिखा ही नहीं है कि कृष्ण द्वारा स्थापना, तो कृष्ण कैसे राजयोग सिखलाएंगे? गाया ही नहीं है कृष्ण द्वारा स्थापना। किसके द्वारा गाया हुआ है त्रिमूर्ति में? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो क्यों नहीं गाया हुआ है? क्योंकि नाम गीता में बदली कर दिया है कि कृष्ण राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। तो सो क्या वो सतयुग स्थापन करने वाला है? है? अगर सतयुग स्थापन करने वाला है तो द्वापर में क्यों दिखा दिया? कृष्ण को कौन से युग में दिखाया? तो द्वापर के अंत में आया, फिर कौन सा युग स्थापन हुआ? कलयुग स्थापन हो गया। तो भगवान आकर के क्या कलाहीन कलयुग की स्थापना करेगा? कृष्ण भगवान होता तो द्वापर के अंत में आकर के कलयुग स्थापन करके नहीं गया। भगवान तो आता है कलयुग के अंत में और कलयुग का विनाश करके 16 कला संपूर्ण सतयुग की स्थापना करता है। तो वो सतयुग स्थापन करने वाला है। देखो शास्त्रों में बात झूठी हो गई ना, सतयुग की स्थापना करने वाला तो शिव को कहेंगे है? क्या कहा, क्यों कहेंगे है? जैसा काम वैसा नाम। कृष्ण का नाम क्या है? अरे नाम ही है क्या कृष्ण? कृष्ण माना है, कृष्ण माने काला, तो काला काला युग बनाएगा या सत्य युग बनाएगा है? वो तो काला युग। अब शिव बाबा का नाम, असली नाम क्या है? शिव। भगवान का असली नाम है शिव, जो नरक को स्वर्ग बनाने वाला है। तो शिव का अर्थ क्या है? कौन से युग में सबसे जास्ती कल्याण होता है? है जरूर संगम युग है, जहाँ सतयुग का फाउंडेशन पड़ता है। तो गार्ड को कहें शिव, बाबा को कहेंगे बाबा। बाबा ही कहते हैं ना बच्चे। तो अभी तुम जानते हो कि बाबा कहना बाबा ब्रह्मा द्वारा, अभी तो ये चित्र बिल्कुल कायम है, कामन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कौन करते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना? ये शिव है, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, बोलते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। फिर
जब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्ण करते हैं? कृष्ण तो नहीं करते, कौन करते हैं? शिव बाबा करते हैं, जिसको करण का रावण हार कहा जाता है। उन करण का रावण हार का भी तो नाम होना चाहिए ना, वो तो लिख देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा है, उसके ऊपर कोई है नहीं। किसके ऊपर? ब्रह्मा के ऊपर। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं ना, फाउंडेशन किसने डाला? ये फाउंडेशन किसने डाला त्रिमूर्ति ब्रह्मा है?
बेसिक ब्राह्मण
है, जो अधूरी पढ़ाई पढ़े हुए बेसिक ब्राह्मण हैं, उन्होंने ही ये फाउंडेशन डाल दिया। क्या भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, उनके ऊपर कोई साकार में नहीं है। अरे उनके ऊपर तो है ना, ये क्रिएशन है ना। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये क्रिएशन है ना, इनका क्रिएटर ऊपर में बैठा। कौन? शिव। सूक्ष्म बतन की क्रिएशन है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उनके ऊपर में रहता है शिव क्रिएटर। ये क्रिएशन है क्योंकि उनको आकार है, फिर ये आकार साकार बनते हैं। लौकिक दुनिया में भी ऐसे ही होता है, बच्चा जब आता है गर्भ में, आत्मा आती है तो वो आत्मा कभी हंसती है, बच्चा हंसता है ना कभी अचानक, कभी रोता है, कोई उसे रुलाता है, कोई उसे हंसाता है तब हंसता है, नहीं अपने आप हंसता है अपने आप रोता है। तो ये कौन सी स्टेज में है, साकारी कहें आकारी कहें या निराकारी कहें? हैं? हाँ, उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा अपने पूर्व जन्म में चली जाती है, माँ की अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं तो हंसती है, खराब खराब बातें याद आती हैं तो रोती है। तो ये क्रिएशन है क्योंकि इनको आकार है। किनको? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्या है? आकार है। फिर बाद में क्या बनते हैं? जो गर्भ में बच्चा होता है वो पहले आकारी होता है, फिर बाद में क्या बनता है? साकारी बनता है। तो उसको फिर ह्यूमन क्रिएशन कहा जाता है। और सृष्टि भी यही है, उसको सृष्टि नहीं कहेंगे। किसको? सूक्ष्म बतन को, जो रिपीट होती, ये रिपीट होती है। ये देखो चक्र भी, ये सृष्टि का चक्र है, कभी भी सूक्ष्म बतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट मनुष्य के लिए कहते हैं। मनुष्य ये जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि ये चक्कर खाती है, सूक्ष्म बतन में कोई चक्कर नहीं होते, न कोई मूल वतन में चक्कर होते हैं। संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बना दे? कलयुग है नरक और सतयुग है स्वर्ग, अभी नरक वासियों को स्वर्गवासी कौन बना दे? इसका जवाब क्या है? नरकवासियों को
जो नर हैं, मनुष्य हैं, नरकवासी कहे जाते हैं। कहाँ के वासी? नरकवासी। उस सृष्टि किसने बनाई? नर ने बनाई नरकवासी सृष्टि। स्वर्ग कौन बनावे? नर मन मनुष्य, जो मन को चलाता रहता है, मन जिसका चंचल रहता है, सो मनुष्य। चंचल मनुष्य वाले क्या बनाते हैं दुनिया को? नर होने से नरक बनाते हैं। वो स्वयं स्थिति में स्थित रहते हैं क्या? नहीं, स्वयं स्थिति में जब स्थित थे तो ये दुनिया सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग था। अभी ये सृष्टि नरक बन गई। तो नरक वासियों को स्वर्ग वो ही बना सकता है जो सदैव क्या? स्वयं स्थिति में स्थित रहे। पतितों को पावन कौन बनावे? जो सदैव पावन हो, इवर प्योर। तो जब पतित होते हैं बच्चे, शुरू होता है वाम मार्ग, तो पतित ही हो जाते हैं। तो पतित जब होते हैं तो पहले दुख नहीं होता है। क्यों? द्वापर के आदमी जब पतित होते हैं तो पहले नरक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हाँ, क्योंकि पहले द्वापर भी पहली अवस्था से गुजरता है, सात्विक स्टेज से। क्योंकि उस समय में रजोगुणी है, जब तमोगुणी बनते हैं, दिन प्रतिदिन दुख में आना है। ये मकान कहो, दुनिया कहो, मकान दुकान दुनिया सारी पुरानी होनी ही है। तो जितनी पुरानी होती जाती है उतना ही दुख बढ़ता जाता है। जितनी आत्माएं तमो प्रधान बनेंगी इतना दुख। तभी तो कहते भी है ना, ये बहुत तमोगुणी बुद्धि है। तमोगुणी बुद्धि की निशानी क्या बताई? खुद भी दुखी होगा, औरों को भी, संगी साथियों को दुखी करेगा। देखो कितना इनमें क्रोध है, कितना ये कामी कुत्ता है। ऐसे कहते हैं ना बच्ची, तो ये बताते हैं ना, ये बहुत तमोगुणी है, ये बहुत सब सतोगुणी है। ये जैसे देवता के समान है, ये तो जैसे असुर देखने में आता है। ऐसे ऐसे एक दो को लेना भी देते हैं चलन के ऊपर। अच्छी तरह से कोई चलता है, बोलते ये तो जैसे देवता है। कोई को कहते ये तो कुत्ते के माफिक भौंकता रहता है। जब भी कोई गुस्सा करता है तो ऐसे कहते हैं। बच्चे भी घर में हुए तभी गुस्सा करते हैं, बाप कहते हैं कुत्ते के माफिक भौंकता क्यों है? कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं और गालियां भी देते हैं। ये कुत्ते का बच्चा, ये गधे का बच्चा, यू ब्लाइंड, सुअर का बच्चा, स्वाइन ब्लाइंड, ऐसे भी कहते हैं। अब ये तो छी छी अक्षर बोलते हैं। ये तो जैसे कि अपन को ही गाली देते हैं। कैसे? कुत्ते का बच्चा तो अपन का गाली कैसे दी है? जब बच्चा कुत्ता तो उसका बाप भी, बाप भी कुत्ता। तो बाप ने समझाया है कि कोई सेंसिबल बच्चा होता है, अगर बाप उनको कहते हैं ये कुत्ते का बच्चा, तो पहले ही वो बोलेगा कुत्ता बाप हो गया ना। फिर कुत्ता है बाप तो कुत्ती भी होगी, तभी तो उनसे कुत्ता बैठा होगा। तो फिर देखो उसमें फर्क क्या हुआ, समझा ना। जैसे बाबा ने कहा था एक जज को, उसने कहा ये गधा, बोला साहब हम गधा तो तुम गधा नहीं, यानी अभी कोई वो कर सकते हैं जज के कंप्लेंट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना कर दी, नहीं वो बोलता है हमने खुद उनको गधा कहा, तो फिर वो बोलता है साहब हम गधा नहीं, हम गधा तो तुम भी गधा, अगर तुम हो मनुष्य, तुम हमको मनुष्य कहेंगे तो तुम भी मनुष्य, समझा ना। क्योंकि मनुष्यों की कोर्ट में मनुष्य ही आवेंगे ना, कि गधा आवेंगे। तो कोई कोई ऐसे अच्छे युक्ति से अक्षर बोले जाते हैं जो कोई को भी कह सको। ओम शांति।